ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश प्रतिभाओं का पावर हाउस है, जो नवाचार और साहस प्रदर्शित करने वाली असंख्य प्रेरक जीवन यात्राओं से भरपूर है। उन्होंने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ग्रीन आर्मी का उल्लेख करते हुए उनकी प्रेरणादायक अग्रणी कार्यों की सराहना की। वाराणसी के देवरा में ग्रीन आर्मी दृढ़ संकल्प वाली महिलाओं का संगठन है, जो नशाखोरी और जुए के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। ये संगठन प्रत्येक बालिका के जन्म पर उत्सव मनाता है और दहेज प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। इस समूह की स्थापना तथा कार्यों की शुरुआत चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री से हुई थी और यहां बनाए गए चप्पलों की पहली जोड़ी प्रधानमंत्री को भेजी गई थी। बाद में श्री मोदी की ओर से इस समूह को प्रशंसा पत्र भेजा गया और इसके कार्यों पर गर्व जाहिर किया गया। देश ने बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में बीते साल नवंबर में वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में सकारात्मक बढ़त देखी गई है। नवंबर 2024 में कोयला उत्पादन में 7.5%, पेट्रोलियम रिफाइनरी में 2.9%, उर्वरक में 2%, इस्पात में 4.8%, सीमेंट में 13% और बिजली उत्पादन में 3.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2024 में भूजल निकासी में 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल वर्ष 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का मूल्यांकन 446 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल के 100% नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं कार्यकारी समिति बैठक में कल इसके महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में गंगा नदी के संरक्षण के लिए समर्पित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन गतिविधियों का उद्देश्य नदी की स्वच्छता, टिकाऊ विकास और पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने दिसंबर महीने में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कई मामलों में 19 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एटीएस ने इनके पास से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र सहित कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी संस्कृति, आस्था और भाषाओं पर प्रचार, प्रलेखन, अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र ICCS के सहयोग से एक विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान खोला जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी घोषणा की है। ICCS का अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी के रोइंग में रिवाज नामक एक केंद्र है, जो इदू मिश्मी संस्कृति और भाषा पर दस्तावेजीकरण, संरक्षण, प्रचार तथा अनुसंधान कार्य करता है। मणिपुर सरकार मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के अंतर्गत जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों को 50,000 रुपए तक का ऋण बिना कुछ गिरवी रखे प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि सरकार पहले ही लगभग 426 विस्थापित लोगों को उद्यमशीलता गतिविधियों में मदद के लिए ऋण दे चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा वित्त पोषित और सफलतापूर्वक चल रहे स्टार्टअप हिंसा प्रभावित लोगों को रोजगार देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वे प्रसन्नता और उत्साह के साथ नव वर्ष का स्वागत करें और समाज तथा राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाएं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के संकल्प के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने को कहा है। हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने कल ओडिशा के राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स को शूटआउट में 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी पर थीं। हैदराबाद की टीम को बाद में जीत का एक और अवसर मिला, लेकिन उनका पेनल्टी कॉर्नर का प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद मैच शूटआउट में चला गया, जिसमें हैदराबाद की टीम ने दिल्ली पर 5-4 से जीत हासिल कर ली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।